हुए हैं, भक्त हो गए, परमेश्वर कृपा हुई, परमात्मा के दर्शन हुए, परमेश्वर ने कहा भक्त कुछ मांगो, कहा परमेश्वर दर्शन हो गए और मांगने को क्या रह गया, ये कोई आपकी कृपा कम नहीं है। कुछ मांगना पड़ेगा, मैं दिए बिना जा नहीं सकता, मेरा स्वभाव है, कुछ मांगो। पिता कहते हैं महाराज धीरज, मेरे कान दो हैं, इससे मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। प्रभु मुस्कुराए, क्या करोगे 10,000 कानों से? कहा आपका भजन कीर्तन सुनूंगा, कथा सुनूंगा, उतने अधिक कानों से तेरा भीतर प्रवेश होगा, तेरी कथा का प्रवेश होगा, तेरे गुणों का प्रवेश होगा, मेरा कल्याण होगा। सीधे पे कूट जाऊंगा, भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं, चलो मैं 10,000 कान दे भी दूंगा, लेकिन ये ऐसा तुम यकीन से कैसे कह रहे हो कि सीधे बैकुंठ जाऊंगा, ये क्या जरूरी है? 10,000 कान से मेरा गुणगान सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, मेरी कथा सुनोगे, राम राम सुनोगे, तो क्या ये जरूरी हो जाएगा कि आपको बैकुंठ मिलेगा, मेरा धाम मिलेगा? भक्त सदक्ष में भक्ति हुआ करते हैं, उनकी सूझबूझ परमात्मा के मुकाबले में तो नहीं होती, लेकिन कम भी नहीं होती। दाता के देव कहा प्रभु मैं आपका पुत्र हूं ना, भक्त कहता है आपका अंश हूं ना, अंश अंशी के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? पुत्र पिता के घर नहीं जाएगा, पिता के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? भक्त की बातें सुन के तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर बहुत अच्छा लगा सुन के भक्त का ये कथन, प्रभु को प्रसन्न देख के कहा अब वहां के लिए वरदान मांगता हूं, मुझे अपने चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? आज का भजन मानो इससे बढ़ के देवी सच तुम जिंदगी की कोई उपलब्धि नहीं, किसी परमात्मा की नौकरी मिल गई, गुरु महाराज की नौकरी मिल गई, वह शहंशाहों को इंद्र के सिंहासन को ठोकर मरता है, इतनी ऊंची चीज है जी। अवसर तो देवी सज्जनों परमात्मा कईयों को देता है, लेकिन हर कोई संभाल नहीं पाता, बहुत जल्दी अभिमान के कारण ये सब चीजें छूट जाती हैं। जो मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे, बीच की बातें छोड़िए, पिता कहता है वहां के लिए वरदान दो, क्या चाहिए? कहा महाराज वहां जाऊं तो अपने चरणों की सेवा मुझे मिले, प्रभु प्रसन्न तथा स्तु मिलेगी। पिता होशियार है, जो एक भक्त होता ही है ऊपर से कैसा भी हो भीतर से बहुत होशियार होता है, परमात्मा को किस प्रकार से रपा करता है, किस प्रकार से घुमाता है, ये उसकी भक्ति का प्रताप है। कहा प्रभु आपने बहुत आसानी से कह दिया तथास्तु, लेकिन वहां तो पहले ही मां लक्ष्मी विराजमान है, मुझे कौन बैठने देगा वहां पर? मेरा और मां लक्ष्मी का क्या मुकाबला? आप तो कहोगे बैठी है ना, ये मेरे चरणों की सेवा करती है, ना जाने कब कितने युगों से कर रही है, मैं तुम्हें ये सेवा कैसे दे दूं? आपने तो भोले भाव में कह दिया तथास्तु, पर ध्यान क्या चाहिए? कहा महाराज यदि लक्ष्मी कहे कि मैं सेवा करूं और मैं कहूं कि मैं सेवा करूं, तो मां लक्ष्मी का पक्ष न लेना ये वरदान दीजिएगा। तेरे चरणों की सेवा मिल जाए क्या होगा? कर्म संन्यास योग नामक पांचवा अध्याय समाप्त होता है। इसके साथ ही 29 श्लोक हैं इस अध्याय के। शुभारंभ इस अध्याय का होता है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछता है हे माधव, आप कर्मयोग की अर्थात कर्म करने की और संन्यास की अर्थात कर्म त्याग की, कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, एक निश्चय करके मुझे बताइए इन दोनों में से कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? सहर्षदेव अर्जुन जिज्ञासु है, अपने भीतर कुछ रखता नहीं है, भीतर बाहर एक है। आप कभी तो कर्मयोग की तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान संन्यास योग, उसमें भारी चर्चा ज्ञान की है, भारी प्रशंसा की है। कभी आप कर्मयोग की कर्म करने की प्रशंसा करते हो, तो कभी आप कर्म त्याग की प्रशंसा करते हो। जो इतने कल्याणकारी है कृपा करके वह मुझे मार्ग दर्शाएगा। भगवान श्री यहां स्पष्ट करते हैं, कहते हैं पार्थ दोनों मार्ग एक ही हैं, दोनों कल्याणकारी हैं, दोनों मार्गों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है, ये हम सब के लिए। हम सब ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि चाहिए, अनेक तरह की पात्रता चाहिए ज्ञान के लिए, हम नहीं हैं। और कर्म से हमारा छुटकारा नहीं, कर्म हर एक गृहस्थ को हर एक साधक को करना ही है। भगवान श्री गीता जी ने हमें कर्म करने के लिए नहीं कह रहे, कहते हैं कर्मयोग करो, ऐसे कर्म करो कि वे कर्म आपके परमात्मा से जुड़ने के साधन बन जाए। कर्मयोग देवियों बहुत सरल शब्दों में सब कुछ, लेकिन जीवन में उतर जाए तो बहुत कुछ करने योग्य नहीं रहता। ये कर्मयोग ऐसा है, अपने कर्म इस प्रकार से करो, उन्हें पूजा बना लो। भाव बदलने की आवश्यकता है, ढंग है किस प्रकार से कर्म को पूजा बनाया जाए। आप भोजन खा रहे हो, इसे पूजा कैसे बनाया जाए? आप भोजन तैयार कर रहे हो, इसे पूजा कैसे बनाया जाए? इसे कर्मयोग कैसे बनाया जाए? कुछ एक दो दिनों में चर्चा करेंगे। आज कर्म करने के लिए भगवान नहीं कह रहे, कहते हैं कर्म योग करो, क्या होगा इससे। संत महात्मा समझाते हैं कर्म बीज है। बहुत से लोग किसान बैठे हुए हैं, जिम्मेदार यहां बैठे हुए हैं, जैसे आप भूमि तैयार करते हो उसके बाद भूमि में बीज डालते हो, खाद डालते हो, वर्षा की इंतजार होती है, पानी देते हो, प्रकाश मिलता है, बीज अंकुरित होता है, कालांतर में विशाल वृक्ष बन जाता है, फल देता है, वे फल आप खाते हो या बेचते हो। संत महात्मा कहते हैं कर्म भी बीज है, समझाने के लिए कर्म भी बीज है जो अंतःकरण की भूमि में बोया जाता है। जो भी कर्म आप करते हो, मान आप अंतःकरण रूपी भूमि में बीज बो रहे हो, ये फल दिए बिना तो नहीं रहेगा। वह बीज जो आपने अपने खेत में बोया था, भूमि में बोया था, वह फल दे रहा है, तो ये बीज फल क्यों नहीं देखा। कर्म अच्छा करो या बुरा, यदि उसे आप कर्मयोग नहीं बनाते, यदि उसे आप पुण्य कर्म पूजा नहीं बनाते, तो दोनों के दोनों बंधन के कारण है। पुण्य कर्म करोगे तो सोने की हथकड़ी, दुष्ट कर्म करोगे तो लोहे की हथकड़ी, हथकड़ियां दोनों में लगेगी। तो गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं क्यों इस चक्कर में पड़ते हो। कर्म को ऐसा बना लो कि ना ये सोने की हथकड़ी लगाने वाला हो और ना ही ये लोहे की हथकड़ी लगाने वाला हो, पांव में बेड़ियां डालने वाला ना हो कर्म। युक्ति भी भगवान श्री गीता जी में सुझाते हैं, जिस कर्म को उबाल दिया जाए, जिस बीज को उबाल दिया जाए, जिस कर्म को कर्मयोग बना दिया जाए, अर्थात जिस बीज को उबाल लिया जाए, बीज तो बीज ही दिखाई देता है लेकिन भूमि में डालने पर वह अंकुरित नहीं होता। जिस बीज को भून लिया जाए, उस बीज को आप भूमि में डालो तो वह अंकुरित नहीं होता, फूटेगा ही नहीं। आपने देखा है ना स्पेरों को, सांप गले में डाले घूमते फिरते हैं, पटारे में डाला हुआ घूमते फिरते हैं, नाग है, कोबरा काटने वाला है, विषैला है, लेकिन सपेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, उसे हाथ में पकड़ के घूमता फिरता है। क्यों? उसे पता है इसके विष की थैली मैंने निकाल दी हुई है। फुंकारे तो मारता है, बेशक मारे, लेकिन ये किससे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अतएव नगर नगर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उस सब को लेकर तो वह घूमता है, निश्चिंत है। भगवान जी कहते हैं अपने कर्मों को भी इसी प्रकार से बना लो, अपने कर्म बीज को भी इसी प्रकार से बना लो कि ये फल देने योग्य न रहे, ये अंकुरित होने योग्य न रहे, ऐसे कर्म को कर्मयोग कहा जाता है। कल जारी रखेंगे साधक से इस चर्चा को, कर्म को पूजा कैसे बनाया जाए, कर्म को कर्मयोग कैसे बनाया जाए, सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएं यदि हमें ये युक्ति आ जाए कि कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना है, तो हम यही जीवन मुक्त है। हमें उस मुक्ति की इंतजार करने की जरूरत नहीं जो मरने के बाद मिलती है, हमें यही मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा, बंधन रहित हो जाओगे। बंधन क्या है? कर्म ही है ना। वह कर्म जब बांधने योग्य ही नहीं रहा तो कौन बांधेगा? मानो रस्सी तो रस्सी रहे, इस प्रकार से उसे जला दो, वह दिखाई तो दे लेकिन बंध समझने के योग्य न रहे कर्मयोग। रस्सी अब लोग जलाओ उसे, तो उसका आकार तो बना रहता है, उसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही बनी रहती है, लेकिन उससे बांधना चाहो कुछ तो वह बांधने योग्य अब नहीं रही, आपने जला दिया है। जिस कर्म को आपने पूजा बना लिया, जिस कर्म को आपने कर्मयोग बना लिया, वह कर्म बांधने योग्य नहीं रहता, तो मुक्त। एक बंधन है, एक मुक्त, मुक्ति। जब बांधने वाली चीज से बांधने योग्य नहीं रही, तो फिर बांधेगा कौन? आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गई, इसी जीवन काल में मुक्त हो गए। जारी रखेंगे साधुचरण इस चर्चा को कल। आज का अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 29वां श्लोक। भगवान श्री यहां घोषणा करते हैं, जो मुझे ऐसा मानता है कि मैं आप सबका कल्याणकारी परम हितकारी सखा हूं। यहां घोषणा करते हैं, आप अपने पति से प्यार करती हैं तो वह प्रियतम है और आप प्रेमी। आपके पति आपसे प्रेम करते हैं तो वह प्रेमी है और आप प्रियतमा। भगवान श्री कहते हैं, मैं हूं प्रेमी और आप सब हो मेरे प्रियतम। भगवान की घोषणा 29वें श्लोक में इतनी सुंदर, इतनी महत्वपूर्ण है। इस घोषणा पर तनिक भी साधक भक्त नजर रखे, डाले, विश्वास करे, तो वह परम शांति का देवी अधिकारी बन जाता है। परमात्मा के होते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकेगा। परम सखा, परम सुहित शब्द प्रयोग किया है भगवान ने अपने लिए, जो मुझे परम सुहित मानता है। ये सुहित क्या होता है? मित्र होते हैं जो एक दूसरे का हित करने वाले, उन्हें मित्र कहा जाता है। मैंने आपका कुछ भला किया है तो अपेक्षा है कि आप मेरा करोगे, उन्हें मित्र कहा जाता है। दोनों ही एक दूसरे का अहित करने वाले हैं तो उन्हें शत्रु कहा जाता है। काटने वाले एक दूसरे को, उन्हें शत्रु कहा जाता है। आप तो हित करने वाले हो, लेकिन दूसरा आपका अहित ही करता है तो उसे शत्रु कहते हैं। परम सुहित क्या है? जो कल्याण ही कल्याण चाहता है, कल्याण ही कल्याण करता है, हित ही हित आपका चाहता है, हित ही हित आपका करता है, हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता, बदले में कुछ नहीं चाहता, उसे सुहृद कहा जाता है। अपने आप को भगवान श्री ने परम सखा कहा है, एकांगी। एक प्रेम कैसा है भगवान का? एकांगी, बाइलेटरल नहीं है, दो तरफा नहीं है बेटा, एकांगी, एक करने वाला, एक की तरफ से जो प्रेम है उसे एकांगी कहा जाता है। भगवान कहते हैं, मेरा प्रेम ऐसा है, मैं आपसे अपेक्षा नहीं रखता कि आप मेरे से प्रेम करो। मैंने कुछ आपका किया है और आप उसके बदले में मुझे कुछ दो, धन्यवाद इत्यादि इत्यादि, इन बातों की अपेक्षा मुझे नहीं है। ऐसे को परम सुहृद कहा जाता है। भगवान की दृष्टि में मेरी माता, और हमारी सृष्टि में तो बहुत कुछ है ना, भगवान की दृष्टि में किसी का अहित नहीं है। हमारी बुद्धि के अनुसार हमें कुछ भी लगे, लेकिन भगवान की दृष्टि से उसने आपका अहित नहीं किया। आपको लगे कि मुझे सजा दी है, आपको लगे कि मेरे काम में भगवान ने बाधा डाल दी है, मेरा काम रोक दिया है, लेकिन आप अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे हो ये बात, भगवान की बुद्धि के अनुसार नहीं, जो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है। हमारी तो बुद्धि सीमित कुछ भी नहीं, उसकी असीम बुद्धि है, आज की बात नहीं देखता, वह आपके अगले जीवन तक की बातें सोचता है और उसके अनुसार वह कर्म करता है। वह कर्म करता है जो आपके हितकर हो, जो आपका कल्याण करने वाला हो, जिसमें आपका भला हो। आपको उससे तकलीफ होती है, आपको उससे दुख मिलता है, इस बात की वह परवाह नहीं करता। कोई बात नहीं, अभी इसे दुख मिल रहा है, अभी इसे निराशा मिल रही है, अभी ये उदास है। कल को मेरी करनी को ये जानेगा तो इसे पता लगेगा कि वो जो मेरे साथ घटित हुआ था, मेरा कल्याण मेरा हित उसी में था। ये हम सबका अनुभव है, ऐसा होता है। लेकिन उस वक्त तो व्यक्ति एक दफा तो भगवान को गाली देता है, एक दफा तो कहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने आज तक जिंदगी में, इस जिंदगी में जहां तक मुझे याद है, किसी का अहित नहीं किया, किसी को कुछ दुख नहीं दिया, फिर परमात्मा ने मुझे क्यों दुख दे दिया। मानो आप उनकी आलोचना करते हो, आप उनको गाली तक निकाल देते हो। जितनी गाली रोज परमात्मा को सुनने को मिलती है, उतनी शायद ही किसी संसारी को सुनने को मिलती हो। हम आलोचना करते हैं उसकी, हम उसे गाली देते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, सुनता है, कुछ नहीं कहता आगे से। कोई बात नहीं, जब तुम्हें समझ आएगी तो तुम्हें पता लगेगा कि तेरा कल्याण इसी में था, मैंने क्यों ऐसा किया। ऐसे परम सुहित को व्यक्ति जान जाता है कि कुछ भी हो, परमात्मा की दृष्टि में मेरा अहित नहीं हो सकता। अतएव परमात्मा की सृष्टि में अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं। जो ऐसा मानता है, जो ऐसा स्वीकार करता है, ये सत्य है। इसे सिर्फ मानना, स्वीकार करना, जानना है। जो ऐसा मानता है उसे परम शांति प्राप्त लाभ होती है। भगवान श्री ने अंतिम श्लोक में आज पांचवें अध्याय में यही कहा है, जो मुझे परम सुहित मानता है, सबका हित करने वाला, मैं मां हूं। भगवान श्री कहते हैं मैं मां हूं। मां कितनी भी दुष्टा क्यों ना हो, औरों का तो बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, लेकिन अपने पुत्र का बिगाड़ते हुए उसके हाथ थर थर कांपते हैं, उसका कलेजा कांपता है, मैं मां हूं। भगवान जी कहते हैं मैं मां हूं। मैं अपने पुत्रों का कुछ बिगाड़ करने का कैसे सोच सकती हूं, न मैं सोचती हूं, न मैं कुछ बिगाड़ती हूं, और ना ही मैं कुछ बोलती हूं। हम सोचते भी गलत, बोलते भी गलत, और करते भी गलत। भगवान जी ना हमारे लिए गलत सोचते हैं, ना गलत कुछ बोलते हैं, और ना ही कुछ गलत करते हैं। हमारी भलाई, हमारा कल्याण उनके जो कुछ भी वह करते हैं उसमें है, उसे परम सुहित कहा जाता है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी रखेंगे। आज इससे पहले दो श्लोकों में 26, 27, 28 दो श्लोकों में भगवान श्री ने छठे अध्याय की भूमिका बांधी है। ध्यान, अगला अध्याय ध्यान योग। कितने अच्छे गुरु हैं, कितने अच्छे आचार्य हैं, ताकि ये भूमिका अगले अध्याय की तैयारी हो जाए। चाहे अर्जुन पूछे, चाहे मैं कंटिन्यू रखूं, इस जो छठा अध्याय ध्यान योग, उसकी आज भूमिका भगवान श्री ने 27 और 28 श्लोक में बांधी है। ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान अवस्था से कैसा होता है, किस प्रकार से इंद्रियों पर नियंत्रण, किस प्रकार से मन पर नियंत्रण, इत्यादि इत्यादि आज उन दो श्लोकों में वर्णन कर दिया है, ताकि कल को वह चर्चा आगे जारी रख सके। यही समाप्त करने की इजाजत दी। धन्यवाद।